ओम शांति। एक बूढ़ी महिला रात में सोने से पहले रोजाना बाइबल पढ़ा करती थी। एक दिन उसके सामने बाइबल का एक वाक्य आया, यदि तुम में सरसों के बीज जितना थोड़ा भी आस्था का भाव होगा तो तुम पर्वत से ये कहो कि वह कहीं दूर चला जाए तो वह वैसा ही करेगा। उसने बाइबल के इस वाक्य का असर जांचने का फैसला किया। उसके घर के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी। उसने उसे दूर चले जाने का आदेश दिया और सोने चली गई। सुबह वह रोज की तरह उठी तो उसे पहाड़ी को दिए गए अपने आदेश की याद आई। उसने अपना चश्मा लगाया और खिड़की से झांका। पहाड़ी वहीं की वही थी और जब उसने उस पहाड़ी को देखा तो वह बुदबुदाई। उसने कुछ अपने आप से कहा, क्या कहा होगा क्या कहा होगा? उसने कहा, हाँ मुझे तो पहले से ही पता था। उसने यही सोचा था कि पहाड़ी तो जाने से रही, हालांकि ऊपर से उसने पहाड़ी को चले जाने का आदेश दिया था, पर भीतर भीतर उसे पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसे अपने ही आदेश पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, परंतु क्या वास्तव में हमारा उन चीज़ों पर विश्वास है? क्या वास्तव में हमने उन चीज़ों को समझा है? शायद नहीं। संडे की अव्यक्तवाणी। बाबा ने स्वकल्याण की तीन बातें इसमें बताई है। पहली सेल्फ नोइंग, दूसरी सेल्फ चेकिंग और तीसरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। स्वयं को जानना, जो हूँ जैसा हूँ, जिसे कहेंगे सेल्फ नोइंग। क्या वास्तव में हमने अपने आप को जाना है? अक्सर हम मुरलियों में सुनते हैं बाबा खुद के लिए कहता है कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे कोई विरला ही जानता है। इस मुरली में बाबा ने ये हमारे लिए कहा है कि जो हूँ जैसा हूँ स्वयं को जानते हो, और उसके भी आगे एक दूसरी स्टेप, यथार्थ रीति से चेक करना, सेल्फ चेकिंग। और जब ये दो हो जाएगी तब होगा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन। तो स्व कल्याण की ये तीन विधियां इस मुरली में बाबा ने हमें सुनाई है, सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। शायद हमने अब तक अपने आप को जाना ही नहीं। सूचनाएं हमने बहुत एकत्र की है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो भी हमारे पास बहुत है, परंतु क्या उस ज्ञान का कोई अनुभव, उस ज्ञान की गहरी पकड़ हमारे पास है? और है भी तो किस हद तक है? सेल्फ चेकिंग कितनी गहराई से, यथार्थ रीति से, बाबा ने कहा हम अपना ही स्व परीक्षण, स्व निरीक्षण करते हैं। और इसमें दो बाधाएं बताई, एक तो अभिमान और एक अलबेलापन। यदि कोई दूसरा हमसे कहे कि तुम बाबा के राइट हैंड नहीं हो तो शायद हम जिद करेंगे शायद अभिमान आ जाए, हम सिद्ध करेंगे उस व्यक्ति को कि तुमने जो कहा है वो गलत है। पर शायद अंदर से हम पहले ही जानते हैं कि मैं गलत हूँ, पर मानना नहीं चाहते। जैसे इस महिला को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, भले बाइबल में लिखा है, जिस धर्म शास्त्र को वो जानती है, मानती है, पढ़ती है रोज, परंतु उसे अंदर से कोई आस्था, कोई विश्वास का भाव नहीं था। तो बाबा ने इस मुरली में कहा, इसलिए इससे मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ? इस अभिमान से, इस अलबेलेपन से। तो स्वकल्याण के लिए ये तीन बातों की आवश्यकता है, सेल्फ नोइंग, खुद को जानना, जो हूँ जैसा हूँ, ना ज़्यादा ना कम, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई आडंबर नहीं, किसी को प्रभावित करने की कोई लालसा नहीं, सेल्फ चेकिंग, एकांत में बैठकर अपने आप को देखना, जानना, और तब होगा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मुरली में बाबा ने क्या देखा? इस मुरली में बाबा ने भुजाओं को देखा, हाथों को देखा, भुजाएं क्या कार्य करती है। हाथों के बहुत से कर्तव्य, हाथ आशीर्वाद देते, हाथ कर्म करते हैं, हाथों की लकीरें देखी जाती है, हाथों से प्रार्थना की जाती है, हाथों से चीजों को पकड़ा जाता है, हाथों से दान किया जाता है, हाथों से लिखा जाता है, सवारा जाता है, सुरक्षा की जाती है स्वयं की, हाथ निशानी है बाहुबल की, हैंडशेक किया जाता है, नमस्ते की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती है, हाथों से मारपीट भी करते हैं, हाथों से कोई चीज को फेंकते भी है, हाथों से दूसरों के दोष भी निकालते हैं, हाथ एकता का भी प्रतीक है। तो हाथों के तो कई काम है। इस मुरली में बाबा ने चार प्रकार की भुजाएं बताई। सबसे पहला कर्म, दूसरा सहयोग, तीसरा शक्ति, चौथा स्नेह। तो सारी मुरली बहुत गहरी है और इस मुरली से हम सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की 14 बातें देखेंगे, जिसमें चार तो भुजाएं हैं, तीन पार्टियां हैं, 6 प्रश्न है। ये मुरली है 16 दिसंबर 85 की। सबसे पहली बात कर्म। बाबा ने कहा, कर्म संकल्प को प्रत्यक्ष करने वाला। और प्रश्न पूछा है कि श्रेष्ठ कर्म को और बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। कर्म को सभी देख सकते। और बाबा ने कहा, कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, या फिर कहो ये सारी निशानी है राइट हैंड्स की। साकार मुरलियों में शब्द आता है वाम मार्ग, द्वापर से देवता है वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग अर्थात द लेफ्टिस्ट, लेफ्ट हैंड, अनराइटियस मार्ग। और आज की सारी मुरलियां आज की सारी मुरली में बाबा ने राइट हैंड किसे कहा जाएगा इसकी परिभाषा दी है। तो ऐसी 14 बातें हम देखेंगे और उसमें सबसे पहली बात है कर्म। तो राइट हैंड के कर्म कैसे होंगे? शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे। अशुभ नहीं होंगे, कनिष्ठ या भ्रष्ट कर्म नहीं होंगे। और बाबा ने यह भी कहा कि राइट हैंड तीव्र गति से कार्य करता है, तो राइट हैंड की निशानी होगी कि वो तीव्र गति से श्रेष्ठ और उच्च कर्म करेंगे। उनकी रूहानी दृष्टि होगी, उनका चेहरा खुशी के रूहानियत से भरा होगा। जैसे परसों भी बाबा ने कहा था, बाप के संग में रहोगे तो रूहानियत रहेगी, और रूहानियत रहेगी तो रूहानी मेकअप होगा, फरिश्तों का मेकअप होगा। ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो तो सबसे पहली बात सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की है कर्म। क्योंकि कर्म, बाबा ने कहा, जो प्रत्यक्ष दिखती है ऐसी वस्तु है। तो लक्ष्य रखेंगे कर्म को श्रेष्ठ बनाए, कर्म को उच्च बनाए, चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा। हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, यह भी कर्म ही है। तो यह राइट हैंड की सबसे पहली निशानी है। जैसे दिखाया गया है कि एक परिवार था, एक पति पत्नी, और उस दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। और 11 साल के बाद एक बेटा हुआ, और वो दो माँ बाप बेटे से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि दिन रात उस बेटे का ही चिंतन करते थे। पर एक सुबह ऐसे हुआ कि पिता को अपने दफ्तर जाना था, और पिता ने देखा कि दवा की एक शीशी खुली हुई है, और क्योंकि ऑफिस जाने में देरी हो रही थी तो उसने अपनी माँ से कहा कि शीशी को बंद कर अलमारी में रख दे। परंतु माँ भी रसोई में कामकाज में उलझी हुई थी, तो ये बात भूलने में उसे देरी ना लगी, और बच्चा खेलते हुए उस शीशी के पास पहुंच गया और दवा के रंग से आकृष्ट हो पूरी पी गया। वास्तव में वो एक विषाक्त दवा थी जिसका कि सेवन केवल वयस्क व्यक्तियों द्वारा अत्यंत सीमित मात्रा में किया जाना था। जब बच्चे में विष के लक्षण प्रकट होने लगे तो बच्चे की माँ उसे लेकर अस्पताल दौड़ी, परंतु बच्चे ने दम तोड़ दिया। माँ स्तब्ध रह गई, वो पति का सामना करने के विचार से ही कप रही थी। जब उस व्यथित पिता ने अस्पताल पहुंचकर अपने प्यारे पुत्र का शव देखा तो अपनी पत्नी की ओर आंखें फेर कर उसने केवल 4 शब्द कहे। वह कौन से शब्द होंगे? वह कौन से शब्द होंगे? उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पति का एकदम अकल्पनीय बर्ताव देखकर पत्नी स्तब्ध रह गई। बच्चा तो मर चुका था, अब वह वापस कभी नहीं आ सकता था, तो फिर पत्नी को दोष देने में क्या फायदा? वह अपनी माँ का भी था तो इतना ही प्रिय पुत्र था। उस पल उसे भी तो सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता थी, और पति ने उसे वही दिया। तो कर्म कैसे? हमारे कर्म क्या? हमारे कर्म में दूसरों को दोष देने की भावना है, या हम परिस्थितियों को वैसा ही समझ लेते हैं जैसी वो है। यह हमारा जीवन एक दूसरे को दोषी ठहराने की एक लंबी कहानी है। तो बाबा ने कहा, जो हूं जैसा हूं स्वयं स्वयं को जान सकते हो अपने कर्म से, यथार्थ रीति से सेल्फ चेकिंग, और फिर तीसरा कदम स्व परिवर्तन। तो 14 बातों में सबसे पहली बात जहां ये तीनों बातों को अप्लाई करना है वह है कर्म, दूसरा है सहयोग। इसमें बाबा ने कहा कि तन मन धन तीनों से सहयोगी हो, और हो तो सदा के सहयोगी हो या कभी कभी के सहयोगी हो। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाला होता है और कोई थोड़े समय कार्य करने वाला होता है, बाबा ने कहा उससे अंतर पड़ जाता है। और यदि कभी कभी के सहयोगी हो तो प्राप्ति में भी अंतर होगा। जब समय मिला, जब उमंग आया या जब मूड बनी तब सहयोगी, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी। तो बाबा ने कहा कि इसमें चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन से पूर्ण सहयोगी है या अधूरे सहयोगी है। और इसमें और दो बातें कही जो कि बहुत गहरी है। बाबा ने कहा तन मन धन कहाँ लगाते हो, बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो या देह और देह के संबंध में लगाते हो। तो दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक तो देह के संबंधों की प्रवृत्ति और दूसरी है देह की प्रवृत्ति, जिसको बाबा ने कहा वो भी बहुत लंबी चौड़ी है। और ये जो देह की प्रवृत्ति है, बाबा ने इसको गृहस्थी कहा, जो कि एक बहुत बड़ा जाल है। और राइट हैंड की तो परिभाषा ही है कि इस जाल से परे रहना। तो ये जो देह की प्रवृत्ति है, ये देह की प्रवृत्ति बहुत बड़ा जाल है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें देह की भूख, देह की प्यास, देह की थकान, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह की वासनाएं, देह की स्मृतियां, देह के संस्कार, देह के धर्म संबंध, देह की भाषा, देह की भूमि, देह के प्यार, सब कुछ आता है। बाबा ने कहा ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, कहने के अधिकारी बन गए, परंतु इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। ये जो दोनों प्रवृत्तियां है, देह की और देह के संबंध की, उन दोनों से परे रहेंगे तब राइट हैंड है। दोनों प्रवृत्ति से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे तब राइट हैंड है। आत्मा का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है शरीर से डिटैच होना। ज्ञान का आधार आत्माओं ने बहुत लिया, योग के आधार पर वह इसको बहुत किया, योग के भिन्न भिन्न प्रयोग किए, सेवाओं में स्वयं को झोंक दिया, पर क्या देह से डिटैचमेंट आई है? शायद नहीं। और देह से यदि डिटैच होना है तो वापस हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। जैसे लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती है, कितने लोग लाइब्रेरी में आते हैं, ग्रंथालय में आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, पर कितनी किताबें अछूती ही रहती है। उसी तरह इस प्रकृति में रहते हुए भी हम अछूते ही रहते हैं। ये प्रकृति भी एक ग्रंथालय है जिसमें नदियां, पहाड़, झील, झरने, आकाश, ये सब किताबें हैं, फूल, बगीचे, सरोवर, झरने, नदी, ये हवाएं, ये जमीन, ये घास, इनको हमने कितना पढ़ा है। ये सब भी तो किताबें हैं प्रकृति की। प्रकृति में रहते हुए हम प्रकृति से अछूते हैं। जितना सामीप्य प्रकृति से होगा, देह से स्वतः ही विरक्ति आएगी, चेतना देह के पार निकल जाएगी। घर में ही बैठे हुए, छत पर बैठे हुए, अनलॉक की सिचुएशन में, जहां पर चारों तरफ लॉकडाउन है, हमें अपने अंदर की चेतना को अनलॉक करना है, रिलीज करना है, मुक्त करना है। और वो मुक्त होगी प्रकृति के गहरे सानिध्य से। तो बाबा ने दो प्रकार की प्रवृत्तियां बताई, एक देह की और देह के संबंधों की। और देह की ये जो प्रवृत्ति है, बाबा ने कहा इसका बहुत विस्तार है, वो फिर कभी और बताएंगे। तो सहयोग में फिर से तीन बातें, जो हूँ जैसा हूँ, स्वयं को जानना, सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कितना सहयोगी बना हूँ, आधा हूँ, अधूरा हूँ, और प्रवृत्तियों से पार कितना गया। फिर तीसरी बात है प्रेम, लव, स्नेह। स्नेह की परिभाषा दी बाबा ने, स्नेह अर्थात मिलन, जैसे देह का मिलन अर्थात हाथ में हाथ मिलाना, वैसे राइट भुजा, राइट हैंड की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में मिलन। जब आपके संकल्प वो हमारे संकल्प, और उसके कभी भी व्यर्थ नहीं होते, उसके संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए हमारे भी व्यर्थ ना हो। उसके बोल सुखदाई है, मधुर है, महावाक्य है, साधारण नहीं है, अव्यक्त भाव वाले है, आत्मिक है, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको ही कहा जाता है स्नेह या मिलन। तीसरा संस्कार, जो उसके संस्कार वो हमारे संस्कार, और उसके संस्कार है उदार चित है वो सदा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, शिव है वो, कल्याणकारी, निस्वार्थ है वो। तो यहां पर फिर तीन बातें, स्वयं को जानना, जो हूं जैसा हूं, कितना प्रेम, कितना मिलन अंदर है, चेकिंग और परिवर्तन। उसके बाद 14 बातों में चौथी बात है शक्ति, पावर। बाबा ने कहा संकल्प वृत्ति दृष्टि कितनी शक्तिशाली हुई, संकल्प को इतना शक्तिशाली बनाओ कि श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करो, वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करो, और दृष्टि से अशरीति आत्मा स्वरूप का अनुभव कराओ। बाबा ने पूछा ऐसे शक्तिशाली बने हो, कमजोर तो नहीं रह गए, अपने संकल्पों में बल भरना। और शक्तिशाली संकल्प वो होंगे जो शुद्ध होंगे, वृत्ति में कोई निगेटिविटी ना होगी, तब वायुमंडल परिवर्तन होगा, और दृष्टि से अशरीर आत्मिक स्वरूप का अनुभव होगा। उसके बाद पार्टियों पर आते हैं, तो ये चार बातें थी। पार्टियों में सबसे पहली बात स्वदर्शन, एक है दर्शन, दूसरा है देखना, दोनों में क्या अंतर है। दर्शन हम किसके लिए कहते हैं, दर्शन भगवान का दर्शन, देवताओं का दर्शन, महान आत्माओं का दर्शन, साधु संत योगी तपस्वियों का दर्शन। तो दर्शन शब्द प्रयोग होता है किसी महान विभूति के दर्शन के लिए देखने को, या तो जैसे भारत में दर्शन शास्त्र है, एनालिसिस, कितनी विवेचना उसमें है, उसको भी दर्शन कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम स्व को देखो, स्व का दर्शन करो, सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। और इस स्वदर्शन से माया के सारे चक्र खत्म हो जाएंगे। माया के भी अनेक चक्र, बस जितना जितना स्व को देखते रहेंगे, फिर से वही तीन बातें, सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो सदा ही शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे, यह याद रहे तो भी माया चित बनेगी। तथा ज्ञान की स्मृति रहे तो बहुत खुशी रहेगी। और बाबा ने कहा, खुशी अनेक प्रकार के दुख बुलाने वाली है। दुनिया तो दुख धाम में है और हम सभी संगम योगी बन गए, यही तो भाग्य है। स्व का दर्शन सतयुग त्रेता में देवताओं को देखा, द्वापर कलयुग में दूसरों को देखा, संगम युग है स्व को देखने का, खुद से बात करने का, स्व का निरीक्षण परीक्षण करने का। अगली बात है पावर ऑफ प्यूरिटी, पार्टी नंबर 2। बाबा ने कहा कि इस शक्ति को धारण कर स्वयं को पावन बनाया, इतना ही नहीं परंतु दूसरों को भी पावन बनाने की प्रेरणा दी है। घर गृहस्थ में रहकर पावन आत्मा बनना और इसी विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना। बाबा ने कहा, तुम बहादुर हो, असंभव को संभव करने वाली आत्मा हो। अगर ये स्मृति रहे कि हम पावन आत्माएं हैं तो परिपक्व होंगे और दुनिया को प्रमाण दिखेगा प्रत्यक्ष। देव पावर ऑफ प्यूरिटी, तो छठवीं बात पावर ऑफ प्यूरिटी, अपनी प्यूरिटी को चेक करना। संकल्प कितने पवित्र है, दृष्टि वृत्ति कितनी पवित्र है, कल्पनाएं और भावनाएं कितनी पवित्र है। मैं पवित्रता का सूर्य हूं और मुझसे पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। बाबा ने कहा, पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हो, इस स्मृति में सदा रहो। वर्तमान समय आत्माएं भयभीत है, पवित्रता की शक्ति से आत्मा को अभयदान देना। आत्माओं के मन में व्याप्त भय यदि नष्ट हो जाए तो संसार की कोई भी बीमारी स्वतः ही नष्ट हो जाए। बीमारी को नष्ट करने की सकाश देने की आवश्यकता नहीं, नष्ट करना है मन स्थित भय को, बीमारी स्वतः ही भाग जाएगी। अगली बात कुमारों से मुलाकात। बाबा ने कहा, कुमार अर्थात मायाचित, कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात बहादुर, कुमार अर्थात माया से हार खाने वाले नहीं, माया को हार खिलाने वाले, कुमार अर्थात किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं, कुमार अर्थात माया से घबराने वाले नहीं, माया जिनसे घबराए, कुमार अर्थात कि माया आ ही नहीं सकती ऐसा चैलेंज करने। कितनी ऊंची बातें कही है। और दूसरी बात कुमारों से, हद में नहीं बेहद में रहना। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं, बेहद में रहना। जैसे बाप संपन्न है बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न रहना, सर्व खजानों से भरपूर आत्मा। और इसी स्मृति से व्यर्थ को भी समाप्त करना, और कुमारों के लिए विशेष रूप से माया चित बनने का आधार है किसी भी देहधारी से दोस्ती नहीं। एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी की मित्रता शायद दोनों के पतन का कारण बनेगी। सभी से प्रेम, सभी के प्रति स्नेहपूर्व व्यवहार, परंतु आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, घृणा भी नहीं, नफरत भी नहीं, परंतु एक न्यारापन। यदि दोस्ती हो जाए तो दोनों का सर्वनाश होगा। कुमार अर्थात मायाजीत, शक्तिशाली, बहादुर, चैलेंज करने वाले, हिम्मत नहीं हारने वाले। अब उसके बाद तीन पार्टियां हो गई। उसके बाद आठवीं बात, समानता। अध्यात्म की शायद सर्वोच्च अवस्था है ये, और इस विशेष गुण की आवश्यकता है। चाहे निंदा हो चाहे स्तुति, आज जाए कल पर आ जाए, सुख दुख सभी में समान। बाबा ने कहा कि दुख भी आ जाए तो उसमें सूरत मस्तक पर दुख की लहर ना हो, सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा भी हो जाए तो जरा भी दृष्टि वृत्ति में अंतर ना हो, सदा कल्याणकारी या दृष्टि शक्तिशाली हो। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? जब निंदा हो तब भी समान, स्तुति हो तो भी वही। जय पराजय हमें डुलाए ना, सुख दुख हमें डिगाए ना, पहले से ही अभ्यास करके रखना होगा। जैसे पुराने जमानों में गांव में सिनेमा दिखाया जाता था, रात्रि 9 से 12 बजे तक सारे गांव वाले उस सिनेमा दिखाने वाले पर्दे के सामने एकत्र हो जाते थे, लालटेन लेकर बैठते थे, या तो फिर अंधेरे में बैठते थे और पर्दे पर एक फिल्म दिखाई जाती थी। और जब फिल्म चलती थी तो गांव की स्त्रियां, भाई बीच बीच में रोने लगते, कभी कभी बहुत हंसते। फिल्म शायद कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती थी या कभी कभी कलर भी। फिल्म शुरू होने से पहले पर्दा खाली है, फिल्म चलती है, उसमें बहुत सारे दृश्य आते हैं, गीत आते हैं, रोने रुलाने के, हंसने हंसाने के दृश्य, और उसी अनुसार दर्शक भी हो जाते। और जब वो चलचित्र खत्म होता है फिर से पर्दा रह जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते। ये संसार भी ऐसा ही है, एक पर्दा जो कि खाली है, फिर उसमें 5000 वर्ष की एक मूवी चलती है जिसमें हजारों दृश्य है। फिल्म खत्म होती है, पर्दा फिर खाली, चलचित्र समाप्त, और लोग अपने अपने घर चले जाते। इस संसार को भी ऐसे ही देखना है। तो यहां की निंदा, स्तुति, जय पराजय, सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करेगा। अगली बात थी ब्लिस, जिसके लिए बाबा ने कहा बैलेंस की आवश्यकता है। या फिर वही बात, शायद ये 6 के 6 प्रश्न किसी एक ही मुरली से है। महिमा सुन रहे तो महिमा का नशा ना हो, और यदि ग्लानि हो रही है तो ग्लानि करने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा भाव ना हो। क्या हमारी दशा है? बाबा ने कहा इसका बैलेंस तो ब्लिस मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है बैलेंस के प्रकार, न्यारा प्यारा, महिमा ग्लानी, स्नेह शक्ति, धर्म कर्म, एकांतवासी और रमणीक, गंभीर और मिलनसार। हम सोच रहे थे रमणीक तो सभी है, एकांतवासी कितने हैं? शनिवार की मुरली थी, जो आनंद एकांत में है वह झुंड में नहीं, जो एकांत में अभ्यास किया जा सकता है वह झुंड में नहीं। इसलिए एकांतवासी बनो, स्थूल एकांत। एकांत की कर्मातीत वाली परिभाषा भी है, एक के अंत में खो जाना, उसकी बात नहीं कर रहे बाबा, स्थूल एकांत की बात कर रहे, सॉलिट्यूड। कितना समय हम एकांत में गुजारते हैं, और वर्तमान समय हर एक के पास बहुत समय है, घरों में बैठे हुए एकांत में, सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी वो बातें करनी है जो आज तक की नहीं थी, जो पेंडिंग काम थे, ऐसी वो आदतें जो आज तक की नहीं, जो हमेशा चाहते थे हम ऐसी आदतें हो, उन आदतों का निर्माण करना, गंभीर और मिलनसार। मिलनसार तो बहुत है, गंभीर कम। उस गंभीर्य को जीवन में कैसे लाए, उसकी योजना, उसका प्लान बनाना। फिर अगली बात थी कि किस बात में समानता लानी और किस में नहीं। तो बाबा ने कहा, श्रेष्ठता में समानता लानी है, साधारणता में नहीं। यहां पर धर्मात्मा बनने की बात कही है। फिर अपने आप से पूछो, सेल्फ नोइंग, धर्मात्मा कहां तक बने, सेल्फ चेकिंग, ऐसे कर्मयोगी बने, ऐसे ब्लिसफुल बने, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को परिवर्तन करो। जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। धारणा कर्म को मर्ज ना करे, और जब ये दोनों ही में समानता या श्रेष्ठता होगी, समान रहेंगे, तब कहेंगे धर्मात्मा। तो धर्म और कर्म, धारणा और कर्म एक हो जाए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न था हलचल। हलचल क्यों है? हलचल का कारण है अंदर कमी है कोई संपन्नता की। बाबा ने कहा, जब कमी होगी किसी चीज में तो हलचल होगी, और यदि कोई वस्तु संपन्न होगी तो हलचल नहीं होगी, और दूसरी बात, वो वस्तु आकर्षित करेगी। इसलिए संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति है। तो जितना स्वयं में संपूर्णतापन भरते जाओगे, उतना आत्मा स्वतः ही आकर्षित होगी। तो स्वयं को भरना है, स्वयं की कमियों को, खामियों को, फेलिंग्स को, इम्परफेक्शंस को, फॉल्ट्स को दूर करना। उसके लिए फिर सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद खुद को देखना। और 13वां प्रश्न था, या 13वीं बात, देही अभिमानी की सूक्ष्म स्टेज क्या है? फिर से वही बात, यदि कोई इशारा दे, यदि कुछ समझानी दी जाए, तो उसे अपने अंदर समाना, सहन कर लेना, और ये समझना कि ये इशारा भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए ही उन्नति का साधन है। महिमा सुनते हैं तो उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, पर अगर कोई शिक्षा व सहारा इशारा देता है तो क्या तब भी उसके प्रति स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहती है? तो बाबा ने कहा, इसमें स्वयं को चेक करो, इसमें स्वयं को गहराई से देखो, क्या ऐसा है? समभाव, समानता का भाव। तो ये थी 13वीं बात। उसके बाद में अंतिम जो हम स्लोगन से लेंगे, बाबा ने कहा कि एक कवच तुमको पहनना है, तो माया दुश्मन तुम पर वार नहीं करेगी, और वो कवच है योग का। और वरदान में भी बाबा ने ऐसा ही कुछ कहा। बच्चों को बाबा सदा कहते हैं कि बच्चे बाप का हाथ पकड़ ले, अकेले नहीं चले, क्योंकि अकेले चलेंगे तो बोर हो जाएंगे या किसी की नजर भी पड़ेगी, और बाप के साथ यदि कंबाइंड अर्थात योग का कवच यदि पहना है तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से बच जाएंगे, अर्थात माया रूपी दुश्मन का वार नहीं होगा। तो इस पूरी मुरली में ऐसी ये 14 बातें थी जिसमें हमें सेल्फ नोइंग, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हूं जैसा हूं, स्वयं को कितना जाना और यथार्थ रीति से चेकिंग, अलबेलेपन और अभिमान ये दो बाधाएं, इनको हटाना, इनसे मुक्त होना और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना, यही स्वकल्याण का मार्ग है। तो सबसे पहला था कर्म, फिर था सहयोग, स्नेह, शक्ति, सुदर्शन चक्र, प्यूरिटी की पावर, माया जीत, समानता, आनंद ब्लिस, बैलेंस के प्रकार, धर्मात्मा, हलचल और देही अभिमानी की सूक्ष्म स्थिति, और चौदहवा योग का कवच। तो स्वयं की हर दिन गहराई से चेकिंग करनी है, देखना है अपने जीवन को, अपने आप को, कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, क्या हूं, कैसे हूं, यथार्थ रीति से स्वयं को देखना और स्वयं का खुद ही खुद परिवर्तन करना। क्योंकि शायद जैसे बाबा ने कहा, दूसरे अगर हमें कोई शिक्षा दे, इशारा दे, तो हम जिद सिद्ध करेंगे। खुद का टीचर खुद ही बन जाना, हमसे अधिक अच्छा हमें और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो स्वयं का टीचर खुद बन जाना, खुद को खुद जगाना, खुद को खुद उठाना। पिछले संडे भी बाबा ने दर्पण की बात कही थी, तो इस दर्पण में अपने आप को देखना, क्या खोया है, क्या पाया है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सत्य है, कितना सत्य है, कितना सार है, कितना सार है। अच्छा, ओम शांति।